अच्छा, अब एक और कौम का जिक्र आया, उनसे भी अल्लाह ने हैज लिया था। अब ये आपको अल्लाह ताला सारी हिस्ट्री बता रहे हैं, ये नहीं कि यहूदों नसारा ने कुरान आके पढ़ना तो उनको पता चल जाए। असल तो मुझे और आपको बताना है, जो हम पढ़ेंगे ना, वो तो बाद की बात है कि वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। मैं और आप पढ़ेंगे जब, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ। एक और कौम भी थी जिसे अल्लाह ने मीसाक लिया था, वह अमिन अल्लादीन कालू इन्ना नसारा खदरा मीसाक। एक ऐसे लोग थे जिनका जिन जिन जिन्होंने अपना नाम नसारा रख लिया। अच्छा, अब वो नसारा उन्होंने अपना नाम खुद रखा था, यानी किस तरह रखा था उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि जब ईसा अलैहि सलाम ने कहा था कि मन अंसारी अल्लाह, कौन है अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार, तो उन्होंने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, तो उससे उनका नाम नसारा पड़ गया। इसी तरह बाज ने कहा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई थी एक बस्ती नासरा में, तो वहां से इनका नाम नसारा पड़ा, बाहर क्या इन्होंने अपना नाम खुद ही नसारा रखा था। इनसे भी अल्लाह ने मीसाक लिया था, तो उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया। अब मीसाक किस चीज का मीसाक, यही समेना वाताना का, और यही बातें जो वहां पे बनी इसराइल यानी यहूदी के भी बनी इसराइली थे, यानी जो यहूदियों से कहा गया था वो इन्हीं को भी कहा गया था। तो क्या इन्होंने किया, फनसुहा मिम्मा जुकिरु भी, वो भी भूल गए एक हिस्सा उसमें से जो उनको नसीहत किया गया, यानी किताब का अक्सर हिस्सा उन्होंने भी भुला दिया। इल्म सिर्फ जुबानी कलामी बातों तक रह गया था। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इल्म उठ जाएगा, तो सहाबा ने पूछा था कि यार सुनना कैसे उठ जाएगा, हम तो खुद भी सीख रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो आपने फरमाया ये तो ये भी करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। इल्म का उठ जाना यही है कि इंसान उसके पर अमल छोड़ दे, उन्होंने भी भुला दिया। आज मुसलमान याद रखे हैं कुरान को कहीं भूल गए हैं? कितने लोग हैं जो कुरान पाक को समझते हैं, सीखते हैं, उसके लिए अपनी जिंदगी को में से कुछ हिस्से को डेडिकेट करते हैं? कितने लोग हैं? या हमारे लिए भी कहा जा सकता है फनसु हद मिम्मा दुकिरु भी, वो भूल ही गए एक हिस्सा उसमें से जो नसीहत किए गए थे। क्या नसीहत किए गए थे, यानी ये किताब, अल्लाह की किताब को भुला बैठे, इस इल्म को भुला दिया। आज अमल तो बाद की बात है, इल्म लेने वाले ही नहीं है। नाजरा पढ़ा दिया तो इतना ही बस, बहुत बड़ा एक काम है। और वो भी अक्सर हमारे बच्चे पढ़ना भी भूल जाते हैं बड़े होके, आज पढ़ना भी नहीं आता लोगों को सही। एक वक्त था कि हम इस पे कहते थे सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और हम समझते नहीं है, आज पढ़ते भी नहीं है। समझना और अमल करना तो आगे की स्टेजेस है ना, तो भूल गए हैं वो जो अल्लाह ताला ने एक किताब दी, एक इल्म दिया, एक नसीहत का पैगाम दिया, उसका एक बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं। सिर्फ खुलता है तो रमजानों में खुलता है, या किसी कोई फौत हो जाए तो खुल जाएगा, या घर किसी ने खरीद लिया तो तब वो खोल लेगा बस। क्या यही नहीं रह गए हमारी मौके जिन पे हम इसको याद करते हैं? फअग्रैना बैनहुम अलअदावत वल बगदा इला यौमिल क़ियामा, फिर अल्लाह ने इनको क्या सजा दी जब वो भूल गए किताब का एक हिस्सा, इन्होंने भी जब मीसाक को तोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर डाल दी अदावत और बोगज़, आपस में इनमें अदावत और बोझ डाल दिया कयामत के दिन तक। अदावत क्या होती है, जो जाहिरी होती है, बोझ क्या होता है, जो अंदर दिल के अंदर होता है। और आप देखें नसारा के अंदर इतने फिरके हैं, और ये आपस में हमें लगता है ना कि ये एक है, वो एक वो वाले हैं जिन्होंने अपने दीन ही छोड़ दिए, मगर जो इनके दीन पे है ना, जो इनके क्रिश्चियन सही है, इनके अंदर जो फिरके हैं, इस कदर एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, इस कदर एक दूसरे को ये मतलब बुरा समझते हैं कि बहुत खून खराबा भी आपस में इनके हुआ, और कभी ये मिलके नहीं बैठ सकते, और कयामत तक के लिए वाकई इनके अंदर अदावत होगी। एक एक का चर्चा है, दूसरा दूसरा का चर्चा है। ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ जानी पहचानी सी बातें कर रही हूं? ऐसे लग तो नहीं रहा आपको? अगर इना बैना हम बगदाई, ये अपने लिए तो नहीं लग रही? आज हमारे मुसलमानों के भी हाल कोई कम नहीं है, हर फिरका दूसरे को काफिर, दूसरा फलां, उसकी मस्जिद में हमारी मस्जिद में फलाने फिरके वाले नहीं आके नमाज पढ़ सकते, वो ऐसे नहीं कर सकते। एक मस्जिद के तो बाहर किसी ने मुझे तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा ये फिरके वाले इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, उन्होंने बोर्ड ही लगा दिया बाहर। इतनी दुश्मनी है। और आज दुश्मनी के अंदर ही आप देख लें कि बाज मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ क्यों खून खराबा कर रहे हैं, क्यों कोई किसी का साथ इसलिए दे रहा है कि ये मेरे फिरके का, और मारा दूसरे फिरके वालों को जा रहा है। ये आपस की बूझ और दुश्मनी है। जब मीसाक तोड़ा जाएगा ना अल्लाह के साथ, तो रहमतें नहीं बरसेंगी, इस किस्म की चीजें आएंगी। तो दिल भी सख्त हो चुके हैं, जो हर रिफून अल कलिम भी कर रहे हैं, आपस में बूझ भी हैं, अदावतें हैं, दिल भरे में कीनों से, एक जगह बैठ के एक जगह पे नमाज तक नहीं पढ़ सकते। वसौफ़ युनब्बिहुम अल्लाह बिमा कानू यसनाउन, और बताएगा उनको अल्लाह जो वो किया करते थे, वो भी अल्लाह ताला उनको बताएगा। ये एक दिन वो भी आएगा कि बाकी भी उनको चीजें अल्लाह ताला उनकी बताएगा जो उनके कारनामे थे। अब ये इतनी इनके अंदर ये भी एक सजा होती है कि किसी उम्मत में तफरका बाजी, एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, ये एक एक कर्स होती है, एक लानत होती है, रहमत नहीं होती है। दिल फटे हुए हैं एक दूसरे से, एक काबा कहते हैं, एक अल्लाह का नाम लेते हैं, एक रसूल का नाम लेते हैं, फिर भी इस कदर आपस के अंदर दुश्मनियां हैं कि खुदा की पना। तो क्या ये पता चलता है हमें? या अहले किताब कद जाकुम रसूलुना, ए अहले किताब, अब अहले किताब को खिताब किया जा रहा है, तुम्हारे पास रसूल हमारा आ चुका है। युबयिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुखफूना मिनल किताब, वो तुम्हें बता रहा है बहुत कुछ जो तुम छुपाते हो किताब में से। मैंने आपको जैसे बताया कि यहूदी अपनी जैसे रजम की सजा को छुपा दिया, सूद की हुरमत को छुपा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बिशारतें लिखी गई थी वो छुपा दी। आप सोचे ये तो आके मदीना में सेटल ही यहूद इसलिए हुए थे कि उनकी किताबों में था कि यहाँ पे इस सरजमीन पे वो आखिरी नबी आएगा, उसके लिए वो यहाँ पे आए थे। और उन्होंने सोचा था कि हम में ही पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे पैदा होना है इसलिए हम यहाँ पे चलते। उनको ये नहीं पता था कि ये अरबों में आ गए। इतना हद तक उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता था जैसे अपने बेटों को पहचानते, फिर भी छुपाया इन बातों को। तो ये नबी तो तुम्हें वाजे करके बताता है, खोल के बताता है बहुत सारी वो बातें जो अपनी किताब की तुम छुपा लेते हो। वह याफू अन कसीर, ये होता है बड़ापन, बहुत सारी बातों को तो वो वैसे ही दरगुजर कर देते हैं। यानी कई बातें ऐसी हैं जिनको वो बयान नहीं करते। वो कौन सी बातें हैं जिसमें कोई शरी काम नहीं है, बल्कि उनमें सिर्फ उनकी रुसवाई है, उनकी जिल्लत है, उनकी बेजती है, उनकी छोटी मोटी ऐसी खराबियों को तो वो इग्नोर ही कर देते हैं कि ये ना जलील हो, दरगुजर कर देते हैं। ये होती है बड़ेपन की बात। ये जरूरी नहीं होता कि हर एक की हर बात को हम खोल खोल के सामने बयान करेंगे, इसको हम बताएंगे कि देखो तुमने ये किया ये किया, तो उसके अंदर ही बहुत अच्छाई होगी। बाज दफा बाज बातों को बताना पड़ता है जो जरूरत है जिसकी, और बाज को जिनकी जरूरत नहीं है उनको दरगुजर कर दें, तो उसमें भी भलाई होती। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस तरह की हरकतों के बावजूद उनको जलील करके नहीं रख दिया था कि तुम देखो तुमने ये एक एक उनकी बात को पकड़ के बैठ जाते, उनकी बातों को उनके मुंह पे मारते। नहीं, कुरान खुद कहता है कि वो बातें बताई जो उनकी यानी जो उनकी शरीयत के अंदर थी, जिसको वो खुद छुपा रहे थे। ईसा अलैहि सलाम ने खुद वो बातें बताई थी, मूसा अलैहि सलाम ने बताई थी, तौहीद की बातें थी जो इन्होंने छुपाई हुई थी। तो ये तो बतानी जरूरी थी, लेकिन बहुत सारी बातों को इग्नोर कर देते थे, दरगुजर कर देते थे, जिसमें इनकी जिल्लत थी और वो जरूरी नहीं थी बतानी। तो सिर्फ उनको जलील करने के लिए, वो जरूरी नहीं भी है, लेकिन सिर्फ उनको रुसवा करने के लिए नहीं बताते थे, क्योंकि उनका ये मिशन नहीं था कि मैं लोगों को रुसवा करूं, इनको बस एक्सपोज करूं, जरा दुनिया को पता चले देखो ये क्या। नहीं, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और किताबें मुबीन। अब रसूल का तो जिक्र पहले आ गया, यहां पे नूर और किताबे मुबीन क्या है? देखें एक बात को याद रखें, एक वाओ होता है इसलिए कि ये और ये दो चीजों को कहा कहने के लिए, जैसे लड़का और लड़की तो वो दो अंक, एक वाओ इसलिए होता है ताकि पिछली बात की वजाहत कर दे, जैसे मोहब्बत तो मवद्दत, बोझ और दुश्मनी, तो ये एक ही चीजें हैं, उसी को वादे कर रही होती है अगला लफ्ज। यहां पे भी नूर क्या है, इसको वाओ के बाद, इसको ये भी एक वाओ होता है, इसकी ही तफसीर है ये कि नूर क्या है, किताबे मुबीन। बाज लोगों ने यहां से कहा कि अपने अपने गलत अकीदे को साबित करने के लिए उन्होंने कहा, यहां पे देखें अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नूर को, तुम्हारी तरफ नूर भेजा, यानी नूर का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताबे मुबीन है कुरान। हालांकि कुरान पाक में कई जगह पर वही इलाही को नूर कहा गया, तौरात को कहा गया ये नूर है, इंजील को कहा गया नूर है, कुरान को कहा गया नूर है, तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे देखा, हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, तो वो नूर मिन नूरिल्लाह है, तो इसलिए ये नूर देखो यहाँ पे लिखा है। ऐसी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि जैसे कुरान की तफसीर कुरान से ही सबसे पहले होती है, पहले आप कुरान में और जगहों पे देखें नूर किस चीज को कहा गया, वही लाइक। और दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो पहले आ चुका है, रसूलुना आ चुका है कि हमने आपकी तरफ रसूल भेजा, अब दोबारा तो नहीं है, अब दोबारा किसका जिक्र है, अब कुरान का जिक्र है। और इसकी एक और बड़ी दलील ये है कि ये नूर और किताबे मुबीन दोनों से मुराद कुरान ही है, कि कुरान नूर है और वो किताबे मुबीन है, वाजे किताब है, क्योंकि आगे आया यहदी बिहिल्लाहु, हिदायत देता है अल्लाह इस किताब, बी ही की जमीर वाहिद की होती है और वो ही की जमीर पीछे की तरफ जा रही है, नूर व किताब मुबीन की तरफ। अब अगर यहाँ पे ये इनसे दो डिफरेंट चीजें मुराद होती तो बी मा होता कि अल्लाह ताला इन दोनों के जरिए हिदायत दे रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिदायत का पैगाम ही लेकर आए, तो इन दोनों के जरिए हिदायत दे रहा है, ये नहीं कहा गया यहदी बिही कहा गया, यानी एक चीज की तरफ इशारा हो रहा है, यानी कुरान पाक, इस दोनों से मुराद कुरान पाक है, कुरान नूर है और किताबे मुबीन है। अगर हम किसी की बात को कह ही दें कि हाँ नहीं भाई ठीक है, ये नूर मानते हैं कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही है, तो नूर से फिर मुराद क्या होगा कि नूर के अंधेरों से लोगों को नूर की तरफ लाने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोशनी का पैगाम बने, पूरी दुनिया के अंधेरों को दूर किया इस दीन को हम तक पहुंचा के, दुनिया तक पहुंचा के, ये मतलब नहीं कि वो नूर है और वो इंसान नहीं है, वो नूर है। अब ये कहां से साबित होता है, जबकि आप दूसरी जगह पढ़ लें सूरह कहफ का आखिर ही आता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर हूं तुम्हारी तरह, ये नहीं कहा आपने कि मैं नूर हूं तुम्हारी तरह, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया आपका है कि मैं बशर हूं, लेकिन यहां पे आके हम कहने लगते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, वो तो नूर थे, वो तो वैसे ही उन्होंने कह दिया, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हिदायत, जैसे हम कहते हैं ये नूरे हिदायत है, हिदायत के नूर बन के दुनिया में आए कि इन्होंने हिदायत का पैगाम पहुंचाया, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे और नूर थे, और अल्लाह के नूर में से नूर थे, तो ये तो शिर्क है कि अल्लाह के नूर में से नूर थे। और कई लोग ऐसा दुरूद पढ़ते हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है नूर उम्मे नूर इल्ला, और ये मतलब है कि अल्लाह का नूर है उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, तो और शिर्क क्या होता है, अल्लाह का हिस्सा बना के रख दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो लोग पढ़ने वाले भी हैं वो जरा थोड़ा आंखें खोल के पढ़ा करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे ही अंधाधुंध कोई भी उठा के किताब, कोई भी वजीफों की किताब मिल गई तो धड़ाधड़ पढ़ना शुरू होगा, उसमें लिखा 20 लाख नेकियां मिलेंगी, 30 लाख ये मिलेंगे, हम बस धड़ाधड़ शुरू हो गए, अरबी में बस कुछ लिखा हम उसको पढ़ने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा वजीफा मिल गया, तो अरबी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बगैर सोचे समझे पढ़ें, देखें तो सही और उसकी देखेंगे इसकी कहाँ से सनद मिलती है, ये कहाँ से हमें ये दरूद आया, या जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं इसकी किधर है इसकी सनद, इसका रेफरेंस कहाँ से है, ये नहीं इसको रेफरेंस ना समझा करें किसी ने ख्वाब में देख लिया, फलाने हमारे बुजुर्ग ने फरमा दी, ये कोई रेफरेंस नहीं होते, दीन मुकम्मल हो चुका, अब किसी की और जरूरत नहीं कि वो हमें बताए कि किस चीज को पढ़ने से कितनी नेकियां मिली है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुकी है, ठीक है। तो यहदी बिल्लाहु हिदायत देता है अल्लाह, यानी इसके ही बी ही साथ, इसके साथ किसके, इस नूर व किताब मुबीन के, किसको हिदायत देता है, मन इत्ता बारी दुआ ना हो, जो इत्तेबा करता है पैरवी करे उसकी रजामंदी की, यानी जो अल्लाह की रजामंदी चाहता है अल्लाह उसको हिदायत देता है। इससे अगर किसी का गोल ये है, किसी का मकसद ये है इस कुरान की तरफ आने का कि मैं अल्लाह की रजा पालू, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं इसलिए इस कुरान से हिदायत चाहती हूँ ताकि ये मुझे रहनुमाई करे उस रास्ते की जिससे अल्लाह राजी होता है, तो ये कुरान उसको हिदायत देगा, अल्लाह इसके जरिए उसको हिदायत देगा। माने तबा रिदवाना सुबुल सलाम, सलामती के रास्तों की। अब हम कहें सिराते मुस्तकीम तो एक है, सलामती के रास्ते क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि सलामती के रास्ते यहाँ पे कहा जा रहा है वो सारे मवाके, वो सारी टाइम्स जिसके अंदर हमें हिदायत चाहिए होती है हमारी जिंदगी में। मतलब हम सुबह उठते हैं ना, हमें इतने सारे कामों में हमें फैसला करना है कि इसमें मैं क्या करूं, मैं किधर नौकरी करूं किधर नहीं करूं, मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, मैं कैसे घर से बाहर निकलूं, मैं उठूं कितने बजे, मैं सोऊं कितने बजे, मैं खाऊं क्या और क्या ना खाऊं, ये बहुत सारे फैसले हैं जो हमें अपनी जिंदगी में करने होते हैं। इन सारे फैसलों में अल्लाह ताला सुबुल सलाम की रहनुमाई उसको देता है इस कुरान के जरिए, जो लोग अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह को राजी कर लें, मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह ताला जरूर उसको सुबुल सलाम की यानी सलामती के रास्तों की जिसमें सलामती है उसकी उसको रहनुमाई करेगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? बात समझ आई, यानी उम्मीद है कि यानी मुख्तलिफ मौके, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ में अल्लाह ताला समझ दे देगा आपको, ये जो कंफ्यूजन है ना इसको दूर कर देगा, मैं करूं कि मैं ना करूं, मैं क्या करूं, ये करूं कि ये करूं, इसमें आपको गाइडेंस चाहिए होती है ना कि कौन सा रास्ता है जो सलामती का रास्ता है, उसमें अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। वो हदीस है ना, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, बस यही है, जो अल्लाह को राजी करने के लिए चल पड़ा बस अल्लाह भी फिर उसको जरूर गाइड करेगा इस कुरान के जरिए। वयुखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूरि बिइज़्निही, और अल्लाह ताला निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ साथ अपने इज़्ज़त के। और आप में से बहुत सारे लोग मेरा ख्याल ये बात महसूस कर सकते हैं, जान चुके हैं आज तक कि इस कुरान ने उनको कहाँ कहाँ रहनुमाई की जिंदगी में, जब इस वाकई जो इस कुरान की तरफ आए ये सोच के कि मैंने अल्लाह को राजी करना है, फिर जब वो इस क्लास से निकलते हैं फिर उसके बाद जिंदगी के किन किन जगहों पर ये कुरान सामने आ जाता है और उनको बताता है कि नहीं ऐसे ना करो, ऐसे नहीं बोलना, देखा ये बात पढ़ी थी हमने, ये कुरान में आया था, मैंने इस तरह से नहीं करना, मैंने इस तरह करना, मैंने ऐसे नहीं चलना, मैंने ऐसे चलना, की थी ना रहनुमाई। तो अल्लाह निकालता है अंधेरों से रोशनी की तरफ, बीजनी साथ अपने इज्जत की, ये अल्लाह ही का इज्जत होता है, उसी की दी हुई तौफीक होती है, इस कुरान के जरिए हिदायत देता है और रहती दुनिया तक देगा। वह यह दी ही मिला सिराते मुस्तकीम, और अल्लाह हिदायत देता है उनको फिर सीधे रास्ते की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ। तो असल बात तो यही है कि ये इस नूर को, ये इस रोशनी को, इस किताब, इस वाजे किताब को थाम लोगे इस नियत के साथ कि बस अल्लाह मुझसे खुश हो जाए तो अल्लाह दिखाएगा रास्ता, अगर नियत यही है तो जाहिर है फिर जब नियत यही होगी फिर जाहिर है इसको देख देख के ही चलेंगे, इसके ऊपर हर बात में इससे पूछेंगे ना। और जिसकी नियत ये नहीं है तो फिर हदीस में आता है ना, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि उलमा का मुकाबला करे या बेवकूफों से झगड़ा करे या लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचे, उनके साथ बहसे करे, तो फिर यही इल्म जो है उसके लिए जहन्नुम में जाने का बायस बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस फरमाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मीसाक को देख सकें कि ये मीसाक जो हमने अल्लाह ताला के साथ किया है हम इसके ऊपर किस जगह पर खड़े हुए हैं, हम अपने आप को चेक कर सकें अपने अखलाक में, कारोबार में, खुशी गम में, रहन सहन में, लेन देन में, इनके आदाब में हम इस अहद को तोड़ रहे हैं समेना माताना के या इसको पूरा कर रहे हैं, मैं समेना अताना वाली हूं या मैं वो हूं जैसे यहूद ने ये रवैया अख्तियार किया, इनके रास्ते पे चलने वाली, जिनको अल्लाह ने मग़दूबी अलैहिम कह दिया, जिनको अल्लाह ने दौलीन कह दिया, उन्होंने मीसाक तोड़े तो उनके साथ क्या हुआ? अब मैं अगर इस पे पूरी उतरूंगी तो ठीक, वरना मैं लाख दुआएं मांग लूं, लाख रो रो के गिड़गड़ा लूं, वो कबूल नहीं होंगी। इसलिए कि मीसाक ही पूरा नहीं। फिर ये सारी चीजें, ये दुश्मनियों वाली बात, ये लानत वाली बात, ये इल्म को भूल जाने वाली बात, ये उम्मत मुस्लिमा पे लागू हो जाएगी। तो याद रखिए एक बात, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से इंसान जन्नत में नहीं चला जाता। इसके तकाजे हैं, इसके साथ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक कोर्स भी आप कॉलेज में लेने जाते हैं ना, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी, फिर जिंदगी को बदलना होगा, फिर ये मनमानियां नहीं चलेंगी। लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता तहकीक, कुफर किया उन लोगों ने। किन लोगों ने कुफर किया? क़ालू, जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि बेशक अल्लाह ही वही मसीह इब्न मरियम है। क्या मतलब? एक तो आपको पता है ना कि ये हमने जो शुरू की हुई है बात, वो आयत 12 से आगे तक हम बात कर रहे हैं अहले किताब की, यहूद व नसारा के अकायद की भी बात हो रही है, इन्होंने जो मीसाक तोड़ा उसकी भी बात हो रही है, और वो हम पहले देख भी चुके हैं। अब ईसाइयों के अकीदे को कि ये जो फॉल्ट है उसको बताया गया। उनमें एक फिरका ऐसा था और आज भी है, उसको उर्दू में याकूबिया फिरका कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि इनकी उसमें क्या कहते हैं। एक तो ट्रिनिटी का अकीदा रखते हैं ना, लेकिन एक वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि अल्लाह ताला ही ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में हलूल कर गया, यानी शक्ल तो ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके अंदर अल्लाह है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये अकीदा कुफर का अकीदा है। ये इस किस्म के अकायद हिंदुओं के अंदर भी हैं, वो भी कहते हैं कि खुदा का अवतार, वो भी कहते हैं इसके अंदर आ गया। फिरौनी भी कहते थे, मतलब तारीख में आप उठा के देखें ना तो बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं कि ये फिरौन के अंदर खुदा ही उतर आया। तो बहुत सारी कौमें इस तरह गुमराह हुई कि खुदा जमीन पे आ गया है इफलां की शक्ल में। इजी वर्ड्स में आपको ये मैं बताती हूँ, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि खुदा जमीन पे उतर आया किसकी शक्ल में? ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। और ये इतनी गंदी बात है, इतनी बुरी बात है कहना मुझसे। अल्लाह ताला ने इसको फरमाया, ये कुफर है जो इन्होंने किया। और अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमानों में भी कोई लोग हैं जी जो ऐसी बातें करते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि ये, अब ये बात चाहे कोई ईसाई करे या अपने आप को मुसलमान कहने वाला करे या हिंदू कहे, कोई भी कहे, ये कुफर का अकीदा है। क्या वो कहते हैं कि नूर मिन नूरिल्लाह, ये नूर है अल्लाह के नूर में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आ गए। इसी तरह बाज ने ये कर दिया कि हजरत अली जब अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी ये एक वाइज वाज में अपने कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो वहां पे उन्होंने जब देखा, पर्दे खुले तो देखा कि अर्श के ऊपर तो अली है। अल्लाह ताला हमें माफ करे कि ये कहां से अकीदे ले आए। और हजरत अली ने जलवा दिया था ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था, उनके जमाने में भी थे जिन्होंने कहा था कि हजरत अली खुदा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके मकाम से ऊपर ना करो, गुलूव ना करो आपकी जात में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज की नसीहतें की कि मेरे बारे में गुलूव ना करो जैसे कि अहले किताब ने किया, उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहदीस ऐसी हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप कितने केयरफुल थे इस मामले में, जरा सा भी लोगों को ऐसी बात नहीं कहने देते थे जिससे कहीं कहीं कोई भी ऐसे शायबा भी हो जाए कि आपके मकाम से बढ़ा के नऊज़ु बिल्लाह कहीं अल्लाह के बराबर कर देना या क्या। और आज तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो तो कहते हैं कि मांगना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हमारी जो हस्ती आज तक चल रही है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आपका मकाम तमाम मखलूक में सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी आप मखलूक ही हैं, आप खालिक नहीं हैं, आपको कुरान अब्द ही कहता है। ठीक है, तो इससे अपने अकीदों की भी दुरुस्ती जरूरी है कि हम भी ऐसा ना करें कि अपने पैगंबर को उलूहियत के मकाम पे बिठा दें।
और जो आज की ट्रिनिटी है वो भी एक तरह से समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह ही मानती है, क्योंकि खुदा का बेटा कह देना हो तो खुदा ही हो गया, वो भी कुफर ही है। फरमाया अल्लाह ताला ने जबरदस्त बात से उनका रद्द किया, कुल कह दीजिए ए नबी आप इनको कह दें क्या, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मह व मन फिल अर्द जमीअन। लो बात ही खत्म हो गई, बात ही यहाँ पे खत्म हो गई कि ये तो मुझे बताओ वो कौन होगा जो अल्लाह को रोक सके अगर अल्लाह इरादा कर दे कि मसीह इब्ने मरियम और उसकी माँ को भी और सारे जो जमीन में सबको हलाक कर दे, इनको फना कर दे, कौन है जो अल्लाह को रोक सके, ये आप बताओ। यानी अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी कुदरत का यहाँ पे इजहार फरमाया कि तुम कहते हो कि वो इलाह है। तो अच्छा, इलाह का जो भी किसी के दिमाग में खुदा का तस्वुर है ना, जितने मर्जी मजाहब आप ले लें, चाहे कोई गया से गया गुजरा किसी ने तस्वुर बनाया हुआ अपने दिमाग में खुदा का, मगर जितने भी ये छोटे जी से जो हम गॉड्स लिखते हैं जिनको गॉड ये कहते हैं, एक बात सब में कॉमन है और वो क्या है कि सब बिलीव करते हैं कि गॉड वो होता है जिसके पास पावर होती है कि नहीं, ऐसा सब ये बिलीव करते हैं कि अथॉरिटी पावर, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने इला कह दिया ईसा अलैहिस्सलाम को, तो ये बताओ कि उनके पास क्या अथॉरिटी है अगर अल्लाह ताला उनको फना कर दे और उनको ही नहीं उनकी मां को भी फना कर दे, तो वो तो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। वो तो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। नबी अलैहिस्सलाम तो वसलाम को ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए थे, अपने आप को खुद से नहीं बचा सके। इंसान इंसान ही है, तो बताओ कौन फिर इख्तियार रखता है किसी को बचाने का, कोई अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता। ये कैसे हैं खुदा जिनको तुमने खुदा कहा है, ये कैसे हैं कि इनको सलीब पे चढ़ा दिया गया, इनके बकौल तो सलीब पे चढ़े ना, हम तो वो कहते हैं वह माँ कतल हुआ माँ सलब हु, उनको ना कतल किया गया ना सलीब दिए गए, ये तो मगर बिलीव करते हैं ना कि भाई उनको क्रूसीफाई किया गया। तो भाई कौन सा खुदा ऐसा है जिसको क्रूसीफाई किया जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, तुम कहते हो कि वो तुम्हें भी बचाएगा कयामत के दिन, वो तो खुद को भी नहीं बचा सके। तो जिसको खुदा समझ रहे हो या जिसमें खुदा हलूल कर गया, वो कैसा इलाह है इतना बेइख्तियार, सिर्फ वो ही नहीं उनकी मां भी बेइख्तियार, और सिर्फ वो ही नहीं जिसको भी कोई दुनिया में समझता है कि ये खुदा है, अल्लाह उसको भी खत्म कर दे फना कर दे, जितने भी लोगों ने खुदा बनाए हुए हैं उनको भी उनके पुजारियों को भी, जितने जिन और एंस हैं और जितने जानवर हुआ, अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, अल्लाह सवाल कर सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला चाहे तो सबको खत्म कर दे। जानते हैं आप कि क्या अल्लाह ताला अगर सबको जहन्नुम में डाल दे, सब इंसानों को, तब भी ये उसका अदल है, जुल्म तब भी नहीं है, वो सबको फना कर दे तब भी उसका अदल है, उसकी मखलूक है, उसका इख्तियार है, और इंसान तो कभी भी उसका हक ही अदा नहीं कर सकता, तो सबको भी वो जहन्नुम में डाल दे तो उसका अदल है, हाँ वो जन्नत में डालता है उसकी रहमत है। तो यहां से हमें पता चला कि जो उनका अकीदा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उनके अकीदे की बताया गया कि उसमें क्या गलती है, और उन्होंने ये अकीदा क्यों इख्तियार किया हुआ था, उनका क्या वजह थी, उसका भी जवाब आगे आ रहा है कि वो ये समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो बिन बाप के चुके हो गई है, लिहाजा वो खुदा है। तो वो भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्ना मसला ईसा, इंदल्ला ही कमाते लिए आदम, ईसा अलैहि सलाम की मिसाल तो आदम जैसी है। आदम अलैहि सलाम को तो अल्लाह ताला ने औरत के भी बगैर पैदा किया, इनको तो सिर्फ मर्द के बगैर पैदा किया, वो तो बिन माँ बाप के पैदा हुए। तो वो एक हस्ती अल्लाह ताला ने ऐसी भी पैदा फरमाई। देखें अब हम आगे देखते हैं, फिर इसका भी जवाब हो जाएगा। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, अल्लाह तो वो है जिसके पास बादशाहत है आसमानों और जमीन की और जो कुछ इनके दरमियान है, वो जो चाहे करे, वो बादशाह है, वो बाइख्तियार है। ये क्या तुम कहते हो कि ये खुदा या ईसा अलैहि सलाम को एक तरफ रख के हम किसी और को भी देख लेते हैं, जिसको कोई भी पूज रहा है उसका क्या इख्तियार है बताएं? कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह तो वो है जिसकी बादशाहत है आसमानों और जमीन में, इनमें से किसी की बादशाहत नहीं आसमानों और जमीन में, उनसे जाकर पूछ भी लें तो मानते हैं इस बात को कि हाँ नहीं ये तो नहीं है, ये पैदा भी हुए हैं वो मर भी रहे हैं, क्या बादशाहत है उनकी भी? इसी मिट्टी में जा रहे हैं या उनको जलाया जा रहा है? तो ये कौन से खुदा हुए जिनको लोग आज पूजने लगे हैं? और जो इन दोनों के दरमियान है वो उस सब की भी बादशाहत अल्लाह के पास है। यखलू को मायशा, वो जो मर्जी पैदा करे, वो खुदा है, उसकी मर्जी है ना, वो चाहे बिन माँ बाप के पैदा कर दे, जैसे आदम अलैहि सलाम को, चाहे बिन माँ के पैदा कर दे, आदम की पसली से हवा को पैदा कर दिया, चाहे बिन बाप के पैदा कर दे, ईसा अलैहि सलाम को पैदा कर दिया, चाहे माँ बाप के यानी मर्द और औरत के थ्रू पैदा कर दे, जैसे सारे इंसान पैदा हुए, चाहे मर्द औरत हैं भी और डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई दोनों में कमी नहीं है, कुछ भी ना उनको दे, वो ठीक ठाक है, क्योंकि अल्लाह सबब का मोहताज नहीं है। ये तो अल्लाह ने एक मेथड इस तरह का बना दिया, वरना ऐसा नहीं है कि ये होंगे तो जरूरी औलाद होगी या ये नहीं होंगे तो औलाद होनी नहीं, कोई बच्चा नहीं पैदा हो सकता, ये तो अल्लाह पैदा करने वाला, तो वो जो चाहे पैदा करें। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, इस पे ना हम सबको एक बात को समझ लेना चाहिए, इसके एज अ साइड नोट, देखें बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारी नस्लों को भी, हम नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के ऊपर काइंड ऑफ एक एतराज की सेंस में कुछ बातें कह देते हैं। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने ये क्यों कर दिया, अल्लाह ने वो क्यों किया। अब आप इसके आगे जुमले लगा लें जो भी आपने भी आज तक सुने होंगे, मैं नहीं रिपीट करना चाहती, बहुत सारे एतराजात होते हैं। क्या इतना काफी नहीं है कि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, अरे अब दूसरी जगह आया यफालु मा यशा, अल्लाह जो चाहे करे, जो चाहे पैदा करे या जो चाहे काम करे, किसी को मौत दे, किसी को जिंदगी दे, किसी को बीमार करे या किसी को ठीक कर दे, या किसी को माल दे दे या किसी को ना दे, या किसी के कोई गम आ जाए किसी के ऊपर, ऐसा गम का पहाड़ टूट पड़े, या किसी को खुशियां दे दे, किसी को आफियत में रखे या ना रखे, किसी को औलाद दे किसी को ना दे, किसी को बेटा दे किसी को बेटियां ही दे, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। या फालू मायशा यखलुकु मा यशा, मैं और आप कौन होते हैं ये इतराजात करने वाले? बादशाह है, बादशाह में सिर्फ ये बादशाह सिर्फ दुनिया के बादशाहों की तरह ना समझे, जो उन बेचारों के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं होता, वो तो खुद देख रहे होते हैं हमारे बगावत ना हो जाए, ये हमारे वजीर बशीर हमारे साथ रहे। अल्लाह वो बादशाह है जो एब्सोल्यूट पावर रखता है, एब्सोल्यूट, उस एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, उसको किसी को राजी रखने की जरूरत नहीं है, उसकी बादशाहत हमेशा से है और हमेशा के लिए, और किसी की मोहताज नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बादशाहत करने में, अपना रूल चलाने में उसको जरूरत नहीं है किसी के वोटों की, किसी लोगों के साथ की, ना फरिश्तों की जरूरत है, ना इंसानों की जरूरत है, ना जिन्नात की जरूरत है, ना किसी भी मखलूक की जरूरत है, एब्सोल्यूट बादशाह है वो, दुनिया के बादशाहों की तरह बादशाह ना समझ लीजिएगा, मुकम्मल इख्तियार है उसको। फिर उसके बाद फिर हमारी क्या मिजाल है कि हम ये क्वेश्चन करें क्यों ऐसे क्यों किया, पहले यानी हमें बताया जाए, हमें पहले इन्फॉर्म किया जाए या हमें हिकमतें बताई जाए या हमसे पूछा जाए, नाउज़ुबिल्ला हम क्या चीज हैं, अब हमें नहीं समझ आती कि ये क्यों हो गया, अल्लाह ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है, फिर वो भी इसका ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ। ये हमारे करने के सवाल नहीं है। क्यों नहीं सर को झुका देते, क्यों नहीं अल्लाह की रजा में और हर हुक्म में मान जाते और कह देते वो जो किसी ने शेर कहा ना, जो मिसाले यार में आए, कि जो अल्लाह ताला तेरी जिसमें रजा है अल्लाह मैं भी उसमें राजी। जरूरी नहीं कि आप अल्लाह ताला माफ करे किसी का कोई फौत हो गया तो वो इस पर खुशियां मनाने शुरू कर दे कि मैं इसके ऊपर बड़ा खुश हो गया हूँ क्योंकि यही अल्लाह की रजा थी। नहीं ये नहीं, इंसान दुखी भी होगा इंसान, लेकिन अल्लाह के फैसले पर इतराज नहीं करना कि उसने फैसले में ऐसा क्यों कर दिया। हाँ दुख होगा, जाहिर है, कुछ कोई गम आएगा उसका भी दुख होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि इंसान उसमें रो भी रहा है या उसको दुख हो रहा है, वो सैड है, उसमें नहीं कोई मसला, लेकिन अल्लाह के ऊपर एतराज मत करो। क्योंकि वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, ये कुरान के मोती हैं, इनको चुन लें, ये बड़ी प्यारी बातें हैं, इनको दिल में उतार लें। एक एक बात है ना जिससे हम अपनी जिंदगी का ट्रैक सही कर सकते हैं। ये जो हमारे जो टेढ़ेपन हुए में ना दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है कि जैसे हम सोचते हैं हम सियासतदानों पे एतराज कर लेते हैं, हम तो हुकूमतों पे एतराज कर लेते हैं, हम तो इंस्टीट्यूट पे एतराज कर लेते हैं, हम तो अपने बच्चों को भी ऐसा कह देते हैं, हम तो माँ बाप को भी ऐसा कह देते हैं, तो इस तरह हमने पता नहीं अल्लाह को भी ऐसा कह देना, तो हमें जो समझ आता है हम तो कहेंगे। नहीं, एक लिमिट है, हद है, इंसान अपनी हद में रह, हद से आगे ना बढ़। ये तेरी हद नहीं है कि तू अल्लाह के ऊपर क्वेश्चन करे, समझ आई? ना तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है, ना तुम्हारी इतनी अकल है, ना तुम्हारी इतनी समझ है, ना तुम्हारी इतनी औकात है ए इंसान के तू अल्लाह के ऊपर कोई बात करे। इतनी बात कोई अगर आप कर लो ना कि उसकी बादशाहत है आसमान और जमीन में, आप जो कुछ उनके दरमियान है, तो इंसान ओवरवेलम हो जाता है कि वो इतनी बड़ी हस्ती आसमानों में जो कुछ है उसके पर उसकी बादशाहत है, जमीन में जो कुछ है, जो इनके दरमियान है, कोई चीज रह जाती है फिर? आसमानों का मतलब ये नहीं कि आसमान आप कहेंगे जो आसमान ऊपर, आसमान मीन यूनिवर्स, ये सारा यूनिवर्स है ना आसमान कहलाता है, जो जमीन से बाहर है ऊपर। और बैना हुमा में देख लें आप जितनी भी खला है, इसके अंदर जितने भी सैयारे सितारे ये सारे आपके, ये सब इसके अंदर ही आ गए। कोई चीज बाहर है इससे, जिसकी हकूमत इन सब के ऊपर है, कितना बड़ा वो हाकिम है, तो हम क्या चीज है फिर? तो अपनी हद में रहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे सवाल सवाल नहीं होते, उनमें एतराज होते हैं, और एतराज छुपे भी होते हैं उनके अंदर, और वो पता चल रहे होते हैं एतराजात, और अल्लाह तो नियतों के भी हाल जानने वाला है। अब हम कहें तो यमुन का क्यों कह दिया, लो इसका क्यों कह दिया, वो ये क्या बात हो गई, ये मसा का क्या हो गया, यानी छोटी छोटी बातों पे। और कई और मसाइल हैं जिनके ऊपर हम बेदरेग मुंह खोल देते हैं और सोचते भी नहीं है सेकंड टाइम कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये हुक्म किसका है, ये बात किसने कही है। आप इंसानों को देख रहे होते हैं, किसी इंसान ने आपको बता दी या किसी अल्लाह के दीन की कोई बात आपके सामने आ गई, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टे कर रहे हैं, उसके ऊपर एतराजात कर रहे हैं, उसमें मीन मेखे निकाल रहे हैं। तो आप ये कुछ सोचें, सोचा करें, ये कहने वाला जो है ये नहीं ओन करता इसको, ये उस बादशाह ने ये बात बताई है और ये हुक्म हमें दिया है जो आसमानों जमीन और उनके दरमियान जो कुछ है उस सब का मालिक है, खालिक है, राजिक है, चलाने वाला है, इस पे पावर रखता है, अथॉरिटी है उसकी। हम तो छोटी छोटी अथॉरिटी वालों से दब जाते हैं, मरहूब हो जाते हैं, पुलिस वाला ही आ जाए हमारे घर के बाहर तो हमारी जान निकल जाती है। इतनी इतनी छोटी अथॉरिटी वालों से भी हमारी टांगे कांपने लगती हैं, FBI का नाम सुन के हमारे हलक में थूक फंस जाता है, इन इनके नाम भी हमें डरा देते हैं। तो अल्लाह की बात और कोई खौफ नहीं है। इंशाल्लाह तिलावत सुनते हैं।
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.